भगवद्गीता है, भगवद्गीता के 15वें अध्याय के बारे में चर्चा करेंगे। इसके बारे में इसका ओवरव्यू करेंगे, पूरा जो बदलाव आ गया है इसका एक घंटे में जो प्रधान श्लोक है की चर्चा करने का प्रयास करेंगे। श्रीपद रामानुजाचार्य अपने गीता भाष्य में शुरुआत में एक सुंदर श्लोक से भगवान कृष्ण की वंदना करते हैं, कैसे कृष्ण ये सारे जीवात्माओं पर कृपा करके भगवद्गीता का संदेश देते हैं। तो अगला इंटरव्यू में जब भी मैं गीता पर क्लास देता हूँ तो श्लोक प्रार्थना के समर्पण करके क्लास शुरू करते हैं। मैं पहले श्लोक का अर्थ बोलता हूँ और फिर हम श्लोक दोहराएंगे। तो रामाचार्य फरमाते हैं कि बताते हैं कि प्रपंच पारिजाताय सोत्र वेत्रैक पाणि, वे जो प्रभु है शरण लेते हैं जब उनका हमेशा पारिजात वृक्ष के समान उनको वो आश्रय प्रदान करते हैं। पर वो भगवान सबको आश्रय प्रदान करते हैं, उन्होंने क्या किया है, सोत्र वेत्रैक पाणि, एक पाणि एक हाथ में सोत्र वेत्र, सोत्र वेत्र मतलब जो जानवरों को नियंत्रण लगाने के लिए लकड़ी या लगाम होता है वो हाथ में लिया है, मतलब भगवान के पाठ साथी बन गए हैं। और दूसरा हाथ ज्ञान मुद्राय कृष्णाय, क्योंकि एक हाथ में तो लगाम है पर क्योंकि अर्जुन मोह में पड़ गए हैं तो ही भगवान एक हाथ में लगाम ऐसे ही रखा है, पर दूसरे हाथ से वो ज्ञान मुद्रा में रख के अर्जुन को दे दे रहे हैं। ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत उदय नमः, ऐसे भगवान ने गीतामृत दिया है उनको प्रणाम करता हूँ। प्रपन्न पारिजाताय तोत्र वेत्रैक पाणये, ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीताम् प्रभुहे नमः। भूमिका का प्रधान 15वां अध्याय है, उसका नाम है पुरुषोत्तम योग। तो गीता का सबसे छोटा अध्यायों में से ये एक है, सबसे छोटे जो अध्याय है भूमिका के पहले 2, 12वें और 15वें दोनों में केवल 20 श्लोक, पर दोनों बहुत महत्वपूर्ण अध्याय है। 12वें अध्याय का नाम है भक्ति योग और इसका नाम है पुरुषोत्तम योग। जो सबसे लंबा अध्याय भूमिका का वो है आखिरी अध्याय 18वां अध्याय, 78 श्लोक है उसमें। और सेकेंड लॉन्गेस्ट दूसरा सबसे बड़ा जो है वो है तीसरा अध्याय 73 श्लोक है उसमें। तो भक्ति की दृष्टि से भक्ति योग का अध्याय सबसे महत्वपूर्ण है, पर ये 15वां अध्याय है इसमें लगभग सारे भगवद्गीता का और सारे तत्व ज्ञान का सार इन 20 श्लोकों में बताया गया है। इसलिए कई बार जब वैदिक पाठशालाओं में छोटे बच्चे जाते हैं कभी उनको श्लोक याद करने हैं तो 15वां अध्याय याद करने को बोलते हैं पुरुषोत्तम योग। और इसी 15वें अध्याय में हमारे जो आचार्य है विश्वनाथ चतुर्वेदी ठाकुर, उन्होंने बताया है कि यहाँ पे 3 श्लोक की भगवद्गीता है। हम साधारण से जानते हैं 4 श्लोक की भगवद्गीता के बारे में, वो श्रीपद रामाचार्य ने बताया है कि 10वें अध्याय के 8वें से 11वें श्लोक जो है वो 4 श्लोक की भगवद्गीता है। कृष्णा जी किताब बताते हैं कि 15वें अध्याय के जो आखिरी 3 श्लोक है 18, 19 और 20 ये 3 श्लोक की भगवद्गीता है। और ये 3 श्लोक की भगवद्गीता क्यों है इसके बारे में इसे उन श्लोकों पर आएंगे तो चर्चा करेंगे। जो 20 श्लोक है इस अध्याय के वे वास्तव में 4 विभागों में विभाजित किए जा सकते हैं। सबसे पहला जो विभाग है वह है कैसे ये भौतिक जगत आध्यात्मिक जीवन जगत का प्रतिबिंब है। तो पहले श्लोक से 6वें श्लोक तक ये विषय है कि ये भौतिक जगत एक प्रतिबिंब है और इस प्रतिबिंब में हम फंसे हुए हैं। तो दूसरा जो विभाग है वह है
कि कैसे इस भौतिक जगत में हम दुख भोग रहे हैं। वह सातवें श्लोक से दस ग्यारहवें श्लोक तक है। और फिर मतलब सबसे पहले ये भौतिक जगत प्रतिबिंब है, माया है, और माया में हम दुख भोग रहे हैं। फिर बारहवें से पंद्रहवें श्लोक में कैसे भगवान हमारा पालन करते हैं और मार्गदर्शन करते हैं भौतिक जगत के, इसके बारे में वर्णन है। तो भले ही हम भक्त नहीं है फिर भी भगवान हमारा पालन करते हैं। वो ज्ञान चक्षु कैसे जो व्यक्ति भौतिक चेतना में है वो भी देख सकता है, तो बारह से पंद्रह श्लोक में। और फिर सोलह से बीस श्लोक जो है, ठीक है अभी हम समझ गए थे ये भौतिक जगत प्रतिबिंब है, यहाँ पे दुख हो रहा है, हमें भगवान का आश्रय ग्रहण करना है। तो जब हम आध्यात्म तक में जाते हैं तो क्या है, तो कैसे शुद्ध भक्ति ये अद्वैत ज्ञान से परी है, या कैसे भगवान ये ब्रह्मज्योति और व्यक्त आत्मा से परे है, इसके बारे में वर्णन है। मतलब शुद्ध भक्ति का जो परत्व है, भगवान का परत्व है, उसकी प्रस्थापना की गई। तो इस तरह से भौतिक जीवन का खंडन, भौतिक जगत का खंडन, फिर भौतिक जगत में भगवान को ऐसे देखना, और आध्यात्मिक जगत में निर्विशेषवाद के परे जाकर भगवान की से प्राप्ति करना, इस सबका वर्णन इन श्लोकों में। तो अब अधिकांश आपको श्लोक पता होगा, तो हम श्लोक सेट करेंगे साथ ही, अभी थोड़ी हम चर्चा कर सकें। पहले श्लोक से कहा श्री साथी
श्री भगवान वाच ऊर्ध्वमूलं अधःशाखं अश्वत्थं चाहुरव्ययं छन्दांसियस्य पर्णानि यस्तंत्रेण सर्वेऽपि।
तो वेदविद्, वेदविद् मतलब जो व्यक्ति वेदों को जानता है। तो साधारणतः वेदों में क्या बताया गया है, कैसे हम कर्मकांड कर सकते हैं। आपको पुत्र नहीं है पुत्र का अनुष्ठी यज्ञ कर लो, आपको रंजन आपका खेती नहीं उग रही है तो आप यज्ञ करो, इस तरह से वर्णन आता है। तो लोग सोचते हैं कि मुझे ये सब मंत्र पता है, यज्ञ पता है, तो मुझे वेद पता है। तो भगवान बताते हैं थोड़े रहस्य पद्धति से बात करते हैं। जैसे जैसे उपनिषदों में वेदों का जो यज्ञ बताया गया है उसका भी खंडन किया गया है। क्यों? क्योंकि वेद कर्मकांड के बारे में बताते हैं, उपनिषद जो है ज्ञान कांड के बारे में बता रहे हैं। तो इसीलिए उपनिषद बोलते हैं कि आप धन प्राप्त करोगे, स्वर्ग प्राप्त करोगे, इससे क्या होने वाला है, ये सब माया है। और उपनिषद हमेशा रहस्यास्पद भाषा में बात करते हैं। तो यहाँ पर एक ऐसा वृक्ष है, राम सेवा कहते हैं एक ऐसा वृक्ष है जो सनातन है, और वृक्ष कैसा है, विशेषता क्या है, उसके जो टहलिया है वो नीचे है और उसका जो जड़ है मूल है वो ऊपर है। अश्वत्थम प्राहुर अव्ययम्, और ऐसा वृक्ष है जो कभी अंत नहीं होता है। और आगे बोलते छंदांति यस्य पर्णानि, जिसके पन्ने है वो क्या है, वेदों के छंद है, वेदों के मंत्र है। और जो वृक्ष को समझ जाता है यस्तम वेद सवेदवे, वह वेदों को जान गया है। तो साधारण लोग वो समझेंगे कि हम पंथों को, लोग वैदिक मंत्रों को जान जाए उसके लिए हमको वेद पता है। तो भगवान बोल रहे हैं कि आप वो वैदिक मंत्र जो है उसके वजह से पन्ने हैं, जो पूरे वृक्ष को समझेगा वो वेद वेद होगा। तो प्रभुपाद जी हैं पूर्वाचार्य समझाते हैं कि ऐसा ऊपर की जो वृक्ष है हम कहाँ देखते हैं, सागर के तट में या नदियों में जलाशय के तट में, इसीलिए एक प्रतिबंब रूप का वर्णन कर रहा है। ये भौतिक जगत आध्यात्मिक जगत का प्रतिबिंब है। और अश्वत्थ तो बताया जाता है कि जो अश्व है, अश्व का वृक्ष है, मतलब जो वट वृक्ष है वो इतना बड़ा होता है कि कभी कभी बहुत फैल जाता है, और जब फैल जाता है तो फिर कहाँ उसकी शुरुआत है, कहाँ उसके अंत है, समझ नहीं आता है। और वही जो बात है वो भगवान आगे के श्लोक में बताएंगे, पर यहाँ पे बता रहे हैं कि जो वेदों के मंत्र है वो क्या है, उसके पन्ने हैं। और ये पन्नों से क्या आता है,
वृक्ष में पन्नों से पहले फूल आते हैं, फूलों से फल आता है। तो वेदिक मंत्रों से फूल आते हैं। क्या फूल आते हैं? वही फूलों का वर्णन दूसरे अध्याय में आता है। तो बयानिमा पुष्पिताओं द्वारा पुष्प, तो यहाँ पे पर्ण, पर्ण यानी पन्ने, पुष्प यानी फूल। तो वेदों के मंत्रों के जप से जो पन्नों के समान है, क्या फूल आएंगे? अर्थ और काम। यहाँ क्या है? कामात्मान स्वर्ग परा जन्म कर्म फल प्रदान क्रिया विशेष बहुना भोग ऐश्वर्य गति। तो ये वेदों के मंत्र के जाप से क्या मिलने वाला है? भोग और ऐश्वर्य। भोग मतलब काम और ऐश्वर्य मतलब अर्थ। तो वेद क्या है? धर्म है। इससे क्या मिलेगा? अर्थ और काम मिलेगा। और ये बताया है ये ऊपर नीचे वृक्ष है, तो इसी का वर्णन अनेक में आता है। शंकराचार्य जी अपने जो लक्ष्मी अर्जुन करुणारत स्त्रोत्र है उसमें भी एक वृक्ष का वर्णन करते हैं, जो देवी देवताएं है गर्भस्तुति जो भगवत कृष्ण भागवत का तीसरा अध्याय है उसमें भी ये वृक्ष का वर्णन करते हैं। तो उसमें तो बहुत विस्तार की तुलना है, और वो तुलना में जाएगा तो पूरा श्लोक इस वृक्ष में वर्णन चला जाएगा। पर शंकराचार्य जो है वो बताते हैं कि संसार वृक्ष बीज मनंत कर्म शाखा युतम कर्ण पत्र मनंग पुष्पम आरुह्य दुख फलिलम पतितम दयालो लक्ष्मी नृसिंह करावलंबम। वे कहते हैं संसार वृक्ष, संसार एक बड़े वृक्ष के समान है, और हर एक वृक्ष की शुरुआत होती है किससे? एक बीज से। सोचते हैं कि संसार वृक्ष का बीज क्या है? अघ बीजम। अघ मतलब पाप, अर्थात मतलब पापी आदमी। तो जो हमारी पापी इच्छा है उससे शुरुआत होती है। अघ बीजम अनंत कर्म शाखा युतम। तो जब वृक्ष बढ़ता है तो कैसे बढ़ता है? जब उसके पहले आती है शाखा आती है। तो हमारे पापी इच्छाओं से क्या होता है? हम अलग अलग कर्म करते हैं। तो इच्छा से कर्म होते हैं, कर्म से कर्म बंधन होता है। जैसे कि बीज से पहली आ रही, तो उस तरह से वृक्ष बढ़ता है। शाखा अभिषम कर्ण पत्र अनंग पुष्पम। और वो कहते हैं इसका पुष्प क्या है? वही अनंग। अनंग मतलब कामदेव। दुनिया में आज भी लोगों को चाहिए काम भोग करने के लिए। तो कहते आयुर्य, तो इस वृक्ष में चल गया भोग प्राप्त करने के लिए, अनंग कामदेव का भोग प्राप्त करने के लिए। तो क्या मिला? आरुह्य दुख फलिलम पतितम दयालो। पर जब मैंने फल खाया तो फल ये जहरीला निकला और दुख मिल गया मुझे, तो पतितम दयालो मैं बहुत सभी हो गया हूँ। लक्ष्मी नृसिंह मम जय करावलंबम। लक्ष्मी नृसिंह जय, मुझे आपके कर का आधार देकर मुझे इस भौतिक जगत से आप बाहर निकालो। तो ये जो है वृक्ष अघ से शुरू होता है पापी इच्छा। तो चक्रवर्ती पाद अपने दांत में बताते हैं कि संसार वृक्ष की शुरुआत जो 15वें अध्याय में बताई गई है, वह शुरुआत 13वें अध्याय के 22वें श्लोक से होती है। 13वें अध्याय का 22वें श्लोक में वो कहते हैं वह संसार वृक्ष का बीज है। वह श्लोक क्या है? पुरुष प्रकृति स्थोही भूते प्रकृति गुणा कारण गुण संगोच्य सदचर्यो जन्मतु। पुरुष प्रकृति स्थो ही, जीवात्मा है प्रकृति में आ जाता है। क्यों? भोग करने के लिए। भूख से भोग करने के लिए आता है, और वो जो इच्छा है भोग करने की वह उसके संसार वृक्ष का बीज बन जाती है, और उससे वह फल जाता है। और यह बीज से जो फल निकलता है वो दुख का फल निकलता है। और फिर चक्रवर्ती पाद मंदिर गौजी में चर्चा करते हैं, वो कहते हैं कि ये जो वृक्ष है, अभी बोलते हैं कि ऊपर नीचे वाला वृक्ष है, जो उल्टा वृक्ष है वो उल्टा वृक्ष कहाँ प्रदर्शित होता है? अगर प्रतिबिंब हो रहा है, प्रतिबिंब किसमें होगा? वो पानी है। ये पानी क्या है? तो बोलते हैं पानी है जीवात्मा का मन, इच्छाओं से भरा हुआ मन। तो हमारा मन जो है उसमें प्रतिबिंब हो रहा है, इसलिए शिक्षाश्रम क्या बोलते हैं? चेतो दर्पणमानचनम्। तो जो चेतना है वो आत्मा भी शुद्ध है। यदि चेतना भौतिक जगत में आती है तो मन रूपी दर्पण से आती है। तो इसीलिए जो मन में प्रतिबिंबित होता है और फिर हमें जो भौतिक जगत दिखता है उसका आकर्षण करता है। और फिर अगले श्लोक में भगवान आगे इस श्लोक का वर्णन करते हैं इसी घोषणा का आपने दोहराएगी।
अधश्चोर्ध्वं कृत्वा तस्य शाखा गुणा प्रवृद्धा विषय प्रवादा अधश्च मूला निरुपसंततानि कर्माणि बन्धी मनुष्य लोके
कर्माणि बन्धी। जीवात्मा है इस वृक्ष में बांधा गया है। किससे बांधा गया है? कर्म से। और कर्म कहाँ होते हैं? मनुष्य लोके। जो मानव जीवन है वही तो कर्म होते हैं। जानवरों के लिए कर्म नहीं है क्योंकि उनकी चेतना है कि स्थित नहीं है। तो भगवान आगे बोलते हैं अधश्य ऊर्ध्वं प्रस्तुतः तस्य शाखा। इसके कुछ शाखाएं हैं वो नीचे जा रहे हैं कुछ ऊपर भी आ रहे हैं। तो ये क्या बोलते हैं भूषण जी कि जीवात्मा भौतिक जगत में फंसता है तो कभी वो पाप करता है तो क्या होता है? तो वो जो शाखा उसकी जी जाती है तो पुण्य करता है तो शाखा ऊपर आती है। तो जो वृक्ष है तो कहाँ से शुरू होता है? बीज। तो ब्रह्मलोक से शुरू होता है। जीवात्मा जब आता है तो अधिकांश रूप से वो ब्रह्मा जी बन जाता है और ब्रह्मलोक से वो संसार सूझ जाता है और उसके बीच में से कभी वो ऊपर आता है जब वो पुण्य करता है अदश्य ऊर्ध्वं प्रस्तुतः तस्य शाखा। और जल दो चीजों के लिए है, एक तो जल प्रतिबिंबित है और उसके साथ साथ जो वृक्ष है वृक्ष को बढ़ने के लिए भी जल चाहिए। वृक्ष को बढ़ने के लिए जल चाहिए। जो हम भले ही बीज है जमीन में डाल देंगे जब तक बीज को पानी नहीं डालेंगे तब तक वो बीज बढ़ेगा नहीं। जैसे महाभारत बताते हैं सनातन गोस्वामी को अपनी शिक्षाओं में कि गुरुदेव जो है भक्ति लता भी देते हैं तो श्रवण कीर्तन जल करे संचरण। तो वो अपने श्रवण कीर्तन करेंगे तो क्या होता है उससे भक्ति लता भी बढ़ता है। पर यहाँ पे संसार वृक्ष का बीज है और वो कैसे बढ़ता है उसके लिए पानी क्या है? गुण प्रवृत्ता विषय गुण। जो प्रवृत्ति के तीन गुण है वह इस संसार वृक्ष के लिए जल के समान है और वो क्या करते हैं वो इसको पोषण करते हैं। तो सत्वगुण हो रजोगुण हो तमोगुण हो वह सब उसको पोषण करते हैं। और क्योंकि ये गुण क्या है इसका वर्णन पिछले अध्याय में हो गया है चौदह अध्याय भाव योग। और अगले अध्याय सोलह अध्याय है उसमें क्या वर्णन आएगा कि ये वृक्ष है इसके दो कॉर्नर्स और इस कॉर्नर दो कोनों में कौन से ऊपर के कोने में नीचे के कोने में कौन सी जीव है वो दैव आसुर संपत्ति भाव योग। दैव संपत्ति के लोग है वो इस वृक्ष के ऊपर के हिस्से में है और जो आसुर संपत्ति के लोग है वो इस वृक्ष के नीचे हिस्से में है। और जो पीछे वाले लोग हैं वो कहाँ है उसका वर्णन सत्रह बजे अध्याय में आता है। तो इस तरह से संसार वृक्ष है ये सारे भगवद गीता का आखिर जो ज्ञान का सेक्शन है ज्ञान का विभाग है तेरह सत्रह बजे अध्याय इसका बहुत महत्वपूर्ण आधार है। और गुण प्रवृद्धा विषय प्रवाला विषय प्रवाला वो कहते हैं कि विषय जो है वो आकर्षण होते हैं उसके कारण जीवात्मा फंसा रहता है। और फिर अगले कुछ मन विचार आता है क्या बता रहे हैं तो समझ में नहीं आ रहा है कुछ शाखाएं ऊपर आ जा रही है कुछ शाखाएं नीचे जा रही है और एक बड़ा रहस्य नहीं लगता है। तो भगवान कहते हैं हाँ ये रहस्य नहीं है इसको समझना नहीं है इसको छूटना है। तो जैसे तुम्हारा लेख लिखते हैं डोंट फिगर इट आउट गेट आउट आप ये समझने का प्रयास करो छूटो इससे भगवान वही अभी अगले दो श्लोकों में बताएंगे ऐसे हमें इसे छूटना है।
न रूपमस्ते रसतोपलभ्यते नान्तो वंशादेर्न च संप्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असं क्षत्रेण दृढेन चित्वा
ततापजं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन् कर्तानं विवर्तन्ति भूयः तमेव साध्यं पुरुषं प्रपद्ये यथा प्रकृति प्रसृतानि
न रूपमस्तेह अस्य इस पुरुष का जो रूप है इह न मतलब इस भौतिक जगत में उपलब्धते आप नहीं पाओगे कि भोगना नांत चादे रचित हम प्रतिष्ठा शुरुआत कहाँ है इसका अंत कहाँ है इसका मूल कहाँ है ये समझना बड़ा मुश्किल है क्यों तो इसका मतलब क्या है कि अरे हमारे जीवन में जब कुछ पद्मस्थ समस्या आती है कोई परिस्थिति आती है तो अचानक कोई बीमारी आ जाती है अचानक कोई गलत फहमी हो जाती है अचानक कोई विपत्ति आ जाती है तो सब क्यों आ रहा है ये समझना बड़ा मुश्किल है कौन से कर्म का फल कैसे आएगा कौन सी वासनाएं कैसे हमारे मन में आएंगी तो वैदिक कल्चर टीचेस अस टू फोकस नॉट ऑन द कॉज बट द रिस्पॉन्स वैदिक संस्कृति हम क्या सिखाती है जो भी हमारे जीवन परिस्थिति आ रही है उसे कारण के विश्लेषण आपकी जरूरत नहीं है उसे क्या प्रतिक्रिया करनी चाहिए वह महत्वपूर्ण है तो न रूप समझती है इसका रूप हम समझ नहीं पाएंगे तो उपलब्ध तो इसीलिए तो अभी हम अधिकांश को समझ सकते हैं कि मैं बीमारी आ रही है कोई समस्या आ रही है तो पूर्व कर्म के कारण है पर कौन सा कर्म कब किया कैसे किया समझना बड़ा मुश्किल है जटिल है तो हम प्रिंसिपल तत्व के रूप में समझ जाते हैं कि हाँ कर्म का फल मिल रहा है उसकी डिटेल मिल जाएगी तो बड़ा मुश्किल है समझ तो कर्म का नियम जानना जरूरी इसलिए है कि हम पुनः बुरा कर्म न करें पर हरेक कार्य का प्रतिक्रिया अगर करना है जानना है तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा हम देखते हैं मित्रों में भी अगर मुझे मलेरिया हो गया है तो मैं जानना चाहूंगा हमारे आश्रम में 300 मच्छर है कौन से मच्छर ने काटा मुझे मैं जानना चाहता हूँ तो जानते जानते हमारा मामा वो मलेरिया से जिंदगी चला जाए शायद हम मच्छर बन जाए हम किसी को काटेंगे वो भी बोले किस मच्छर ने काटा मुझे और मच्छरों की परंपरा हो जाएगी वो तो इसीलिए क्या है हम पहले तो बताएंगे इसके बारे में चिंता मत करो क्या करो भगवान बोलते हैं कि अश्वत्थमेन ये शुद्ध है सुविरूढ़मूलम इसके मूल बहुत रूढ़ है सुविरूढ़मूलम असंग शस्त्रेण दुहेन चित्वा चित्वा मतलब आप काटो कैसे काटो असंग संग देखे उनका कितना चक्रवर्ती पाद बता रहे हैं वो कितना उचित है और 13वें अध्याय का 22वां श्लोक बता रहे हैं बोलते हैं कि संसार वृक्ष का ये बीज है तो वहां पर क्या शब्द आता है पुरुष प्रकृति स्तो ही भूमते प्रकृति जानवान कारण गुण संगोध्य संग दे तो अभी भगवान उसी को लेके बोलते हैं कि यहाँ पे क्या दिए असंग चाहिए संग मतलब हम भौतिक गुणों से भौतिक इच्छाओं से हम संग करते हैं तो संज्ञान संज्ञाते हाँ भौतिक इच्छा होती है तो यहाँ पर भगवान बोलते हैं असंग आप जो इसका संग है वो त्याग कर दो असंग को त्याग कर देंगे तो क्या होगा असंग शस्त्र असंग मतलब विरक्ति अनासक्ति तो अनासक्ति एक शस्त्र है असंग शस्त्र और असंग शस्त्र कुछ समय के लिए नहीं चलेगा झूठा हमेशा अपने साथ में रखना चाहिए जैसे कोई योद्धा है वो शस्त्र लेके जाता है वो शत्रु आता है शस्त्र घुमाता है और शत्रु मार जाता है और बाद में शत्रु वायु में रख देता है और आराम से जाता है तभी शत्रु आगे वहां डाले तो शस्त्र जो है योद्धा को हमेशा अपने साथ में रखना चाहिए असंग शस्त्र कि जो विरक्ति है वो हमेशा होनी चाहिए कि कुछ समय के लिए है बातें नहीं है कुछ समय के लिए है उससे क्या होगा उससे हम थोड़ा वृक्ष काटेंगे पुनः वृक्ष वापस वो बड़ा हो जाएगा वापस काटेंगे वापस बड़ा हो जाएगा असंग शक्ति ना दृढ़ और फिर उसके बाद में अभी इस प्रकार जो है ना कि असंग आप व्यान हस्त्र उठाओ ये जो ज्ञानी लोग हैं उनको बड़ा अच्छा लगता है शंकराचार्य जी के जो आत्मबोध योगी है या विवेक चूड़ामणि है इसमें से वर्णन है असम एक बहुत बड़ा शस्त्र है तो ये ज्ञानी लोगों को बहुत अच्छा लगता है असंग से हम
सारे बौद्ध धर्म के आके हम आध्यात्मिक प्रमुख में हो जाएंगे। चौथे श्लोक में भगवान बोलते हैं कि नहीं 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 आपको ब्रह्मा ज्योति मिलेंगी होना है, ब्रह्म ज्योति के लिए परे जाना। पदम तर परिमार्जित उद्यम, क्या भौतिक बहुत जगह को छोड़ दोगे तो वो पद वो जगह को ढूंढो यस्मिन् गतान निवर्तन्ति भूयः, उस जगह में जाओ आप जहाँ से आप कभी वापस नहीं आओगे। अपर को जी केवल हम कभी जैसे जाएंगे वहां से कभी वापस नहीं आएंगे, बोले उसका काफी समय काफी नहीं है। तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये, वहां से आपको जो पुरुष है उसको प्रपद्ये प्रपद्ये में जाना है। तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये तथा प्रवृत्ति प्रसुता पुराणी, वो व्यक्ति से वास्तव में सारी बहुत ही जगत आया है। ज्ञानी लोग कहते हैं क्या कह सकते हैं कि हम भगवान की पूजा करेंगे भक्ति करेंगे और उसके बाद मुझे से मिली हो जाएगी, पर भगवान स्पष्ट रूप से खंडन कर रहे हैं कि आप शाश्वत पद प्राप्त करोगे उसके बाद में आप ढूंढो कि वो परम पुरुष कौन है और उसकी शरण में जाओ। और इसके बाद में भगवान अगले श्लोक में बताएंगे कि अच्छा ठीक है, एक तो मैंने बताया अस्मिन् वशिष्ठ कि आप वृक्ष को काट दो, चक्रवर्ती बात बताते हैं कि वृक्ष को नहीं काट सकते हैं हम, पर हमारा जो वृक्ष से बंधन है उसको काट सकते हैं। क्योंकि वृक्ष क्यों नहीं काट सकते, पहले बताया भगवान ने कि अश्वत्थम प्राहुल औदेयम, पहले जो बताया था कि ये अव्यय वृक्ष है इसको हम काट नहीं सकते, पर कर्मानुबंधी मनुष्य लोग दूसरे श्लोक में बताया था कि हम कर्म के बंधन से इस वृक्ष से बांधे गए हैं हम उसको काट सकते। अतः प्रपद्ये, मुझे परम पुरुष को शरण जाना है, वो शरण जहां जाना है वो अगले श्लोक में भगवान बताते हैं। निर्माण मोहाजित संग्र दोषा आध्यात्म विद्या निवृत्त कामा, द्वंद्वेन विमुक्ता सुख दुख संगे रक्षन यमुना परमा। निर्माण मोहान, मुक्त है इससे मान और मोहन, जो आचार्य ने बताते कि ये संधि विग्रह दो प्रकार से होता है, मान और मोह दो चीजें हो सकती है या मान का मोह हो सकता है, दोनों एक ही है। ठीक है, माया से संग से मुक्त होना है। निर्माण मोह संग दोष, निर्माण और मोह क्यों आता है कि संग जो भौतिक प्रकृति गुण का संग है उससे होता है, तो उस संग को हमें जीत लेना है। आध्यात्म क्या सदैव याद रखना है कि मैं भगवान का दास हूँ, आध्यात्म जितना रहना है। और विनिवृत्त काम, हाँ ये बहुत सुंदर वर्ण है कि भगवान प्रभुपाद जी संगीत में कहने थे वन हु इज डन विद लस्ट, डन विद लस्ट मतलब कि बोलता है कि मुझे अभी काम वासना में कुछ भी लेना नहीं है। निवृत्त मतलब क्या, रिटायर, जो व्यक्ति ये 60 साल का हो जाता है तो बोलता है कि नौकरी से मैं रिटायर हो जाने को। विनिवृत्त का महान, पर भौतिक जगत में हम किसी मालिक से काम नौकरी कर रहे हैं तो वो हमको कुछ समय का निवृत्ति दे देगा, अरे काम आसना है कभी निवृत्ति देती ही नहीं है, तो इसीलिए हमको जबरदस्ती नियुक्ति लेनी पड़ेगी। और नियुक्ति लेने के बाद भी जैसे कभी कभी कुछ ब्रह्मचारी को होता है कि वो ब्रह्मचारी अपनी कंपनी का अच्छा काम कर रहे होंगे तो ब्रह्मचारी होने के बाद भी कंपनी बोलती आ जाओ कंपनी में, हम आपको डायरेक्टली पोस्ट दे देंगे, कुछ आपको इंटरव्यू देना पड़ेगा डायरेक्ट आ जाओ तो प्रपोज कर देंगे। तो ऐसे काम वासना है, हम ब्रह्मचारी वैसे काम वासना नियुक्ति नहीं है, पर काम वासना लोगों ने कर दिया, आ जाओ मेरी सेवा में तुमको बहुत सुख दूंगा। तो बोलते हैं विनिवृत्त काम, विनिवृत्त मतलब विशेष रूप में नियुक्ति, ऐसी नियुक्ति कि वापस कभी पूर्ति नहीं आनी चाहिए। विनिवृत्त काम द्वंद्वय मुक्त सुख दुख संगे, और ये बोलते हैं आचार्य बताते हैं चक्रवर्ती की बात, ये एक कॉजन है, अगर आप पहला चाहिए दूसरा करना चाहिए, दूसरा चाहिए तीसरा करना चाहिए, मतलब निर्माण मोह मोह से मुक्त होना चाहिए, क्या करना चाहिए प्रकृति के संगों से प्रकृति संग नहीं करना चाहिए, और प्रकृति संग नहीं करना है याद रखना है कि मैं आत्मा हूँ, आत्मा हूँ याद रखना है तो क्या करना है काम वासना से आकर्षित नहीं होना चाहिए, और काम वासना से आकर्षित नहीं होना चाहिए तो क्या करना चाहिए सुख दुख संगे द्वंद्वयी मुक्त कि ये पुरुष है ये स्त्री है ये सुंदर है ये सुंदर नहीं है ये द्वंद्व है इससे सुख दुख आता है, तो ये द्वंद्व से पढ़ना चाहिए क्योंकि ये माया है।
और अभी ये मोह है, सत्य नहीं है, कुछ शायद ये सत्य है। गच्छन्ति, अगर कोई इस तरह से शरण जाएगा तो गच्छन्ति चल जाएगा। कहाँ जाएगा? गच्छन्ति अमूढ़ा। तो कई बार भगवान जब यूज करते हैं मूढ़ा, जो मूर्ख है, पर जो व्यक्ति इस तरह से करता है वो क्या है? अमूढ़ा, वो मूर्खता से मुक्त हो गया है। पदम अनुभव, वो शाश्वत पद को प्राप्त करेगा। तो ये जो ऊर्ध्व मूलम का जो श्लोक है, ये श्लोक है, इसका विशेष तात्पर्य हमारे गौड़ीय संप्रदाय में हमको मिलता है। गौड़ीय संप्रदाय में कैसे बताया गया है कि प्रभुपाद जी अपने ग्रंथ में बताते हैं कि जो असली वृक्ष है उसमें जो फल सबसे ऊपर है वह प्रतिबिंब में सबसे नीचे रहेगा। ठीक इस तरह से जो भगवान की परकीय भाव में माधुर्य लीला है वह आध्यात्मिक सर्वश्रेष्ठ है, वो इस भौतिक जगत में सबसे नीचे रहता है, सबसे नीचे रहते हैं। तो वो पुरुष अवैध संग करते हैं तो बहुत बड़ा पाप बताया गया है शास्त्र में। पर कई का मतलब है, कई बार लोग बोलते हैं कि भगवान ऐसे राष्ट्र करते ही क्यों है, राष्ट्र करेंगे नहीं तो लोगों में गलत कमी नहीं होगी, लोग सोचेंगे नहीं कि कृष्ण कामुक है और फिर सब शांत रहेंगे। पर वास्तव में भक्तिनाथ ठाकुर बताते हैं कि भगवान जो राष्ट्र करते हैं उसको कृपा है, क्यों कृपा है कि शास्त्र बताते हैं कि जीवात्मा भगवान का अनुकरण करने के लिए भौतिक जगत में आया। तो अनुकरण केवल एक भावात्मक रूप में नहीं है कि भगवान भोक्ता है और हम भोक्ता बनना चाहते हैं, पर वो व्यवहारिक रूप से भी है। भगवान जो है गोपियों का भोग करते हैं, तो भगवान के जो संबंध है वो आध्यात्मिक तरह है, पर फिर भी भगवान गोपीनाथ है, गोपियों का भोग करते हैं। जीवात्मा भौतिक जगत में आता है, वह जीवात्मा के सुंदर रूप को जो है उनका भोग करा जाता है। तो जब भगवान राशिया प्रदर्शित करते हैं तो वो सत्य जो है दिखता है, तो व्यावहारिक रूप से समझते हैं कि ये सत्य है और ये प्रतिबिंब है। जब हम दोनों समझ सकते हैं तो फिर वास्तव में हम विश्वास करते हैं प्रतिबिंब है और सत्य है, ये प्रतिबिंब को छोड़ना है और सत्य की ओर जाना है। पर दुर्भाग्यवश अगर हमारा वो ज्ञान अच्छी तरह से सुदृढ़ नहीं है तो क्या होता है? विपरीत प्रभाव होता है। साधारणतया जो प्रगतिशील भक्त है जैसे रूप गोस्वामी पाद जो है वो बताते हैं कि हे प्रभु जब मैं देखता हूँ कि भौतिक जगत में पुरुष स्त्री में कितना आकर्षण है तो मेरे मन में आकांक्षा होती है कि जो आकर्षण स्त्री का पुरुष की ओर है, पुरुष का स्त्री की ओर है, वह इस तरह से मेरा मन आपकी ओर आकर्षित हो जाए। युवती नाम यथा यूनव यूनव जो युवती नाम यथा मनोमय रमते तत्र मनोमय रमताम गई। मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे? पुरुष स्त्री को जब देखता है शुद्ध भक्त को सोचता है कि ये तो प्रतिबिंब है पर मुझे भगवान की ओर से आकर्षण होना है। तो अगर हमारा तत्वज्ञान सुदृढ़ नहीं है तो क्या होता है? शुद्ध भक्त को प्रतिबिंब को देखकर सत्य की याद आती है, पर हमारे पास क्या हो जाता है? सत्य को देखकर प्रतिबिंब की याद आती है। तो जब हम राधा कृष्ण की लीला सुनते हैं तो क्या होता है उससे? कभी कभी हमारी काम वासना रुक जाती है। जैसे प्रभुपाद जी कृतज्ञतामृत माधवेन्द्रपुरी का उपाख्यान है मध्यलीला के चौथे अध्याय में और बताते प्रभुपाद जी जो साधन भक्त है उसको रासलीला के बारे में श्रवण क्या हो विचार भी नहीं करना है। अब वो तो बहुत स्ट्रिक्ट है। प्रभुपाद जी बताते हैं कि आप जब रासलीला सुनते हो कृष्ण लोगों ने रासलीला दी है और कृष्ण लोगों ने सबके लिए बताया बाहर के मित्र करते। प्रभुपाद जी बोले जब आप रासलीला सुनते हो अगर उससे आपकी काम वासना बढ़ रही है तो मत सुनो, मतलब अभी तक आप शुद्ध नहीं हो गए हो, आप सब प्रभु में आ गए हैं। तो क्या होता है जब शुद्ध जब गंभीर भक्त है वो जब रासलीला के बारे में श्रवण करता है तो वो भगवान को एक युवक और गोपियों को युवती के रूप में देखता है, तो भगवान को भगवान के रूप में और गोपियों को भक्त के रूप में देखता है और देखता है कि भक्त और भगवान कितना सुंदर आदान प्रदान कर रहे हैं। और स्वाभाविक रूप से जब हम भक्त के रूप में देखेंगे तो हम सोचते हैं कि भक्त जो है वो उसके भगवान उसको भगवान से कितना प्रेम कर रहे हैं, तो फिर उससे हम खुद की पहचान भक्त से करेंगे और हम भगवान की सेवा करने का प्रयास करेंगे। पर क्या होता है भगवान के लिए भले ही हनुमान इतनी सुंदर सेवा करके लौट के आते हैं किष्किंध में तो जब वो पूरा बन देते हैं
चूड़ामणि दर्शन राम कपिवर वचना श्वासित राम,
तो जो तुलसी रामचंद्र सुनते हैं हनुमान जी का पराक्रम तो इतने प्रसन्न जाते हैं, बोलते हैं कि हे राम हनुमान तुमने जो सेवा की है इसके लिए कुछ कहा भी लगता तीनों लोग दे दूंगा तुम्हें, पर तुम तो शिष्य बनते हो तुम्हें तीनों लोग चाहिए ही नहीं, मैं दूंगा ही तो तुम्हें स्वीकार नहीं करूंगा। अरे बाह्य रूप से बताते हैं वाल्मीकि ऋषि बताते हैं, भगवान कहते हैं कि मैं वास्तव में अभी जंगल में हूँ, मेरे पास कुछ भी पैसा नहीं है, क्या दूं मैं तुम्हें, तो मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं तुम्हें देता हूँ, यही है मेरे पास ऋषि देने के लिए। पर ऋषि आचार्य उसका वर्णन करते हैं विस्तारित रूप से, ये तो बाह्य विचार है, भगवान के पास कोई कमी नहीं है, भगवान सोचते है कि हनुमान ने तुम्हें जो सेवा की है उसके लिए मैं तीनों लोग प्रदान कर सकता हूँ, तुम तो सिद्ध भक्त हो तो तीनों लोग होंगे नहीं, मैं तुम्हें कहा दू ये तीनों लोगों का आधार जो है वो मेरा दिव्य रूप है, वो मैं तुम्हें प्रदान कर देता हूँ। तो भगवान हनुमान जी का आलिंगन करते हैं, तो ज्यादा हम उसी पर देखते हैं जब भगवान हनुमान जी का आलिंगन करते हैं तो हमारे अपने भक्ति भावना उत्पन्न होती है कि कैसे भगवान अपने भक्त से प्रेम करते हैं, पर अगर वैसे ही भगवान राधा रानी का आलिंगन करते हैं तो क्या होता है हमारे मन में कोई भक्ति भाव नहीं आता है, राधा अंदर कुछ और भाव आता है, क्योंकि हम अभी शुद्ध नहीं है तो हम राधा रानी को भक्ति के रूप में नहीं देखते हैं, हम वो भौतिक दृष्टि देखते हैं। इसीलिए आचार्य लोग बताते हैं कि हमारे स्तर में हम जो प्रतिबिंब है और जो सत्य है, तो प्रतिबिंब का निचला भाग है पुरुष से जो संग करते हैं उसकी ओर नहीं देखना चाहिए, और वैसे ही सत्य का सर्वोच्च भाग जो है जो राधा कृष्ण के अंतरंग संबंध है इसकी ओर भी नहीं देखना चाहिए, हमें हर हृदय को शुद्ध करना है और तत्व ज्ञान को सुदृढ़ बनाना है, और फिर जब हम शुद्ध हो जाएंगे सभी सत्योगों में स्थित जाएंगे तभी हम ये महान लीलाओं का श्रवण कर सकते हैं। और फिर इसके बाद में प्रभुपाद जी एक त्यौहार विद्यालय है अपने प्रवचन में बोलते हैं कि हमारे पड़ोस में बेंगलोर बंगाल में ही कलकत्ता में ही एक एक हेयर कटर नहीं कह रहा था, वो दादा वो बताता है कि जब भी मैं जब भाग जाते हैं और राधे 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 कीर्तन करते हैं तो मेरे पड़ोसी जो है उसकी पत्नी का नाम राधा है, मुझे उसका याद आता है। तो प्रभु जी बोलते ये है अशुद्ध मन का परिणाम। अशुद्ध मन से क्या होता है, हम दिव्य राधा रानी का नाम लेते हैं तो दिव्य स्मरण नहीं होता है, केवल भौतिक स्मरण होता है, इसलिए हम ये प्रतिबिंब से हम समझ सकते हैं वास्तव में ये भौतिक जगत में चल रहा है। जो उपमान है वृक्षों के बड़े वृक्ष से समझ सकते हैं भौतिक जगत से होगा जो प्रतिबिंब है, तो प्रतिबिंब को हम क्या करते हैं सत्य की ओर जाने का प्रयास करते हैं, और प्रतिबिंब ने सत्य की ओर जाना है तो हमारे ये आंखें मदद नहीं करेगी, शब्द मदद करेगी। आप प्रभुपाद जी बोलते हैं कि हम कान सुनते हैं ध्वनि, ध्वनि से हम आंखों से देखेंगे तो प्रतिबिंब नहीं सत्य लगेगा, और श्रवण करेंगे तो हम सुनेंगे प्रतिबिंब झूठा है और फिर हम सत्य की ओर जा सकते हैं। अब इसके बाद में भगवान बताते हैं ठीक है अगर आपको हमें शरण करने जाना है और शरण जाके फिर वहां पे क्या होगा, तो बताते हैं कि वहां पे मेरा धाम है, वो अगले श्लोक में बताते हैं। चौथे श्लोक में क्या होता है कि अब बताया कि आपको वहां पे परम पुरुष से शरण जाना चाहिए, और शरण कैसे जाना है वो पांचवें श्लोक में बताया, और छठे श्लोक में बताया कि वो परम पुरुष कहाँ रहते हैं, वो धाम कहाँ है, क्या है वो धाम, वो छठे श्लोक में बताते हैं। शशांको न पावकः यद्गत्वा निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। बताते हैं कि जो परम धाम है ये भौतिक जगत जो है अंधकार से भरा हुआ है। अभी उपनिषदों में जो ज्ञान लोगों को बड़ा पसंद आता है बोलते हैं कि तमसो मां ज्योतिर्गम, अंधकार से रोशनी की ओर जाओ, तो उनकी कल्पना क्या है कि भौतिक जगत अंधकार है और हम ब्रह्मज्योति चले जाए, पर भगवान बोल रहे हैं कि वो ब्रह्मज्योति के परे एक ऐसा दिव्य लोक है वो भी ज्योतिमान है, और ज्योतिमान है इसका क्या सबूत है कि वहां पे सूर्य चंद्र अग्नि की जरूरत नहीं है, बस वो ज्योतिमान है ना। भगवान अब आध्यात्मिक जगत में भगवान की लीला के लिए सूर्य चंद्र और अग्नि है पर उनपे निर्भरता नहीं है। भगवान ने रासलीला करनी है तो पूर्ण चंद्रमा जब आती है तभी वो माधुरी रस का भाव उन्हें स्वाभाविक रूप से जागरूक हो जाता है, तो चंद्र है सूर्य है, पर उनसे निर्भरता नहीं है, उनके बिना भी सब वो तेजमान है, तो वो केवल लीला में एक आभूषण के रूप में है। अतः बताते हैं चक्रवर्ती का इसका आवरण देते हैं, बोलते हैं कि इसका एक और अर्थ है मतलब विधा से सूर्य, कहते सूर्य जो है वो आंखों के देवता है, जो चंद्र है वो मन के देवता है, और जो अग्नि है वो वाक वो वाक वाणी की देवता है। तो कहते वो जो मेरा जो धाम है वह आपकी दृष्टि के परे है, आपके दृष्टि के देखने के परे है, आपके मन के चिंतन के परे है, और आपके वचन के वर्णन के परे है। वह अचिंत्य है, वह अदृश्य है और अविर्वचनीय है। और कोई व्यक्ति बोलेगा ये पहला विवाह हो रहा है प्रतिबिंब और सत्य के बारे में हो रहा है, तो ठीक है वो था वहां पे है, वो वहां पे भगवान खुश हो गए, मैं यहाँ पे भी खुश हूँ, यहाँ पे जाने क्या जरूरत है। तो यहाँ पे कैसे दुखी है इसका वर्णन सातवें से ग्यारहवें श्लोक में आता है। यहाँ पे भगवान बहुत ही जय का वर्णन करेंगे कैसे हम यहाँ पे दुख भोग रहे हैं।
ममैवांशो जीवलोके जीवभूता सनातनः मनः शश्राणि द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति
कर्षति। कृष्ण और कर्षण ये दोनों विरुद्ध है, कृष्ण से हम दूर जाते हैं तो कर्षण कर्षण और घर्षण शब्द भी कहते हैं सुनने के लिए, हमारा कर्षण होता है हमारा घर्षण होता है, तो कर्षति हम बड़े दुख में भुगतते हैं। वहां से कैसे हम दुख भुगत रहे हैं, मन शिष्टान इंद्रियाणी जो मन और इंद्रिया है इनके द्वारा दुख भुगत रहे हैं, क्योंकि क्या है मन और इंद्रिया अलग अलग प्रकार से वासनाएं करते हैं, ये चाहिए वो चाहिए, और ये कभी पूरी होने वाली नहीं है। मटेरियल डिजायर्स आर इररेसिस्टिबल एंड अनफुलफिलेबल, ये विडंबना है कि उनको रोकने का प्रयास किया तो रोक नहीं कर सकते, उनको पूरा करने का प्रयास किया तो पूरे नहीं कर सकते, तो ये ऐसी वासना है इररेसिस्टिबल एंड अनफुलफिलेबल। तो क्या करें, इससे तो जीवन फंस गया है, इसको रोकने का प्रयास रोक नहीं सकते हैं, पूरा करने का प्रयास है पूरा नहीं कर सकते, क्या करें। इसीलिए कर्षति उसका एक ही इसे छूटने का एक ही मार्ग है कि हम भगवान के चरण जाए, भगवान हमको इसे मदद कर सकते हैं। ठाकुर कहते हैं गोपीनाथ स्वामी में
अनेक जताना होई लो देखो न शरण तुम्हें,
अगर मैंने बहुत प्रयास किया है तुम ये इंद्रियों को नियंत्रण करना संभव नहीं है, हार जे मैंने किया मैंने हार स्वीकार करे संभव नहीं है, तो कर्षति तो हमें ऐसे नहीं होना चाहिए कि अगर हम ब्रह्मचारी आश्रम में है इंद्रियों को नियंत्रण करना इतना मुश्किल है, बहुत बड़ा संघर्ष है, पुष्ट संघर्ष है, पर वास्तव में ऐसे नहीं है कि इच्छाओं को नियंत्रण करना संघर्ष है, इसमें संघर्ष है, अगर इच्छा को पूरा करा जाएगा तो वो भी बड़ा संघर्ष ही है, तो संघर्ष से कोई मुक्ति है ही नहीं भौतिक जगत, देयर इज नो इजी वे आउट, नो जगह संघर्ष है, वास्तव में इंद्रियों को इच्छा को पूरा करने में संघर्ष है वो बहुत बड़ा संघर्ष है, इंद्रियों को नियंत्रण करना जो है वो कम संघर्ष है, तो अगर ये संघर्ष हम यशस्वी हो जाएंगे तो हम बाधित मुक्त हो सकते हैं, इंद्रियों को पूरा करने जा रही इच्छाओं को तो उसके संघर्ष में कुछ अंतर है ही नहीं। जैसे अब हम जानते कि वो घोड़े की उपमा है कि सारथी जो है वो पांच घोड़ों पर चल रहा है, पांच घोड़ों पर चल रहा है और जो जो उसका पैसेंजर है यात्री जो बैठा है वो आत्मा है, तो अभी घोड़ा चल रहा है तो घोड़ा बहुत शक्तिशाली है, इधर जहां जाता है उधर जहां जाता है तो उसको रोकना बड़ा मुश्किल है, उसको रोकना मुश्किल है, पर अगर घोड़े देख लेते हैं वहां का ऐसा स्वादिष्ट फल है जो फल खाना है और उसको दौड़ने दिया उधर तो क्या होगा, वो दौड़ने लगेगा और जितनी उसकी रफ्तार बढ़ेगी उतना उसको रोकने के लिए और संघर्ष करना पड़ेगा। पहले अगर वो घोड़ा भी गलत दिशा में दौड़ रहा है तो दौड़ने लगे तो उसकी गला पकड़ कर फूक जाएगा, पर उसको थोड़ा दौड़ने दिया तो क्या होगा और उसकी रफ्तार बढ़ जाएगी, रोकना और मुश्किल हो जाएगा और वो कहीं खड्डे में जाकर गिर जाता है, वो तो फल खा लेगा उतना पर वो पूरा रथ जो है उल्टा फुलटा हो जाएगा, उसके बाद में वो रथ को सीधा करके रास्ते पे लाने में कितनी समस्या है। तो इसलिए
क्या है, इसी तरह से इंद्रियों को नियंत्रण करना मुश्किल है, पर इंद्रियों का नियंत्रण छोड़ के जिस दिशा में इंद्रिया जाते हैं दिशा में जाना, उसे समस्या और बढ़ जाती है। तो इसीलिए सब लोग इस भौतिक जगत में कर्शी सुख भोग रहे हैं। तो ये क्यों भूख भोग रहे हैं, हमसे भगवान के अंश है, भगवान को भूल के हम भगवान को संतुष्ट नहीं कर रहे हैं, मन अंश को संतुष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं, इसी कारण दुख भोगत करे। और कर्शी बच्चे बोले कहाँ सुख, मैं तो बड़ा सुख हूँ, मेरे पास बहुत पैसा है, अच्छी नौकरी है, अच्छा परिवार है, कर्शी कहाँ है। तो भगवान बोलते हैं कि ये ज्यादा समय का सीखेगा नहीं, तो अगले शो में बताते हैं कैसे ये सब खत्म हो जाएगा, आपको पुनर्जन्म अपना पड़ेगा। यह संघर्ष है शरीरम यदावाप्नोति यच्चाभ्युत्क्राम ईश्वरः गृहे द्वैतानि सैन्यानि वायुर्गन्धानि कामशया। कहते हैं शरीर आपने प्राप्त किया चला जाएगा, पर ईश्वर ये व्यंगात्मक रूप से बताया गया है। तो वो कैसा ईश्वर है, वो एक शरीर में रहता है, आसक्त जाता है तो शरीर से हकाल दे जाता है, और दूसरे शरीर में आता है उसमें आसक्त जाता है वहां से भी हकाल दे जाता है। किस प्रकार का ईश्वर है, कोई ईश्वर नहीं है वास्तव में, पर एक तरह का ईश्वर सत्य भी है। तो क्या है कि उसको कौन सा अगला शरीर मिलेगा वह अपनी इच्छाओं से निर्भर करता है, इसीलिए क्योंकि उसको अपने शरीर पर नियंत्रण नहीं है इसीलिए वो ईश्वर नहीं है, पर क्योंकि वो अपने भविष्य के शरीर जो कौन सा शरीर प्राप्त होगा उसकी दिशा को वो निर्धारित कर सकता है अपने चुनाव से, उसको ईश्वर बताया गया उत्क्रम ईश्वर गृहताई संज्ञाती वो स्वीकार करता है, त्याग करता है। जैसे वायु गंधान निवाशय, जैसे पानी की हवा तो ऊपर नीचे आती है, पर अगर जो वायु जो तो जाता है अगर बगीचे के ऊपर से आता है सुगंधित हो जाता है, और अगर वो कहीं उसे लग जाता है तो गंदा हो जाता है। तो उस तरह से जो आत्मा है जिस परिस्थिति में रहता है उस प्रकार की उसकी चेतना हो जाती है, वायु गंधान निवाशय। तो इसीलिए अगर हम सत्संग में उसको रखते हैं तो क्या होता है, हमारी इच्छाएं पवित्र हो जाती है, और फिर हमारा जिस दिशा में जाएगा भविष्य में वो एक सब अच्छी दिशा हो जाएगी। और फिर ये बताने के बाद भगवान बोलते हैं अगला शरीर मिलेगा वो कैसा शरीर मिलेगा, वह थोड़ा भी फिलोसॉफिकल हो रहा है। भगवान कहते हैं कि शरीर आपके मन में जो इच्छाएं हैं उसके अनुसार हमको इंद्रिय मिलेंगे, तो जो मैकेनिज्म ऑफ रीइंकार्नेशन है वह पुनर्जन्म का जो यंत्रणा है उसका वर्णन अगले श्लोक में आता है। श्रोत्रम चक्षुः स्पर्शनम् च रसनम् घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चाय विषयानुपसेवते विषयान् उपसेवते। और जीवात्मा का सेवा का धर्म है, सेवा का धर्म को छोड़ नहीं सकता है वो, तो अब किसकी सेवा करता है, भगवान की सेवा छोड़ विषय की सेवा करता है, उपसेवते सोचता है कि मैं विषय पे नियंत्रण कर रहा हूँ, वो स्त्री का भोग करता है सोचता है कि मैं स्त्री का नियंत्रण कर रहा हूँ, पर वास्तव में वो स्त्री उस पर नियंत्रण कर रही है, स्त्री उसकी बॉस है। ऐसे कभी कभी घर में ऐसे नोटिस लगाते हैं, आई एम द बॉस ऑफ दिस हाउस, परमिशन ऑफ माई वाइफ दूसरे को, मैं इस घर का स्वामी हूँ, और ऐसे कहने की इजाजत मेरे पत्नी से मिल गई है, मतलब असली स्वामी कौन है, पत्नी ही है। तो विषयान उपसेवते, तो वास्तव में उसको लगता है कि मैं भोग कर रहा हूँ, मैं नियंत्रण कर रहा हूँ, इसलिए उप शब्द आ गया है वहाँ, पर वास्तव में क्या कर रहा है, वो इंद्रियों की सेवा कर रहा है। जब पुरुष स्त्री को आकर्ष होता है तो क्या होता है, स्त्री बोलती है मन मना भव मद भक्तो मद्यारी जब पुरुषी को आगे क्या बोलता है, वो मेरा चिंतन करो, मेरा भजन करो, मेरे भक्त बनो, मेरे सामने प्रणाम करो, मैं जैसे बोलते हो वैसे करो, फिर तुम मेरे पास आ जाओ। और जीवात्मा क्या बोलते हैं, सर्वधर्मान ठीक है, आप जो बोलेंगे मैं करने को तैयार हूँ, इस तरह से वो फंस जाता है जीवात्मा। तो ये जो भाव के है तो क्या बताते हैं कि
श्रोत्रम चक्षु स्पर्शनम च प्रथमं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायम्।
ये सब इंद्रिय जो है उनका अधिष्ठाता कौन है, वो मन है। अच्छा जैसे हाथों के पास उंगलियां है वैसे हाथों के बाद पांच उंगलियां ऐसे जो हाथ है वो मन है, इसके बारे में पांच उंगलियां है। और ये मन में जो इच्छाएं पूर्व जन्म में आई है वो अगले जन्म में जाती है और उस मन के आराम उनके चारों नई इंद्रिया आती है जरूरी भोग हो सके। और जो भोग होता है वह भोग में बड़ा दुख होता है पर ये दुख साधारण व्यक्ति समझ नहीं सकता है, उसको सिर्फ बुद्धिमान व्यक्ति समझ सकता है। तो जो साधारण व्यक्ति होता है कि मैं तो भोग कर रहा हूँ आराम से जी रहा हूँ, पर जिसके पास ज्ञान है वो समझेगा कि मैं वास्तव में दुखी हूँ। उसका वर्णन कैसे अज्ञान व्यक्ति समझ नहीं सकता है उसका वर्णन अभी तो भगवान करते हैं। उत्क्रामितम वाजानम वुणान्वितम भगवान बताया था पांचवी श्लोक में मूढ़ नहीं है, पर यहाँ पे विमूढ़ा विशेष रूप से मूढ़ा हो गया है। क्या ना अनुपश्यन्ति वो नहीं देख सकता, क्या देख सकता है कि वास्तव में इस भौतिक जगत में जब जी रहा है कैसे वो शरीर में है, कैसे शरीर से खींचे जाता है बाहर, शरीर के अंदर होते हुए भी इधर उधर खींचा जाता है अपनी इच्छाओं से प्रकृति के नियमों से, समझ नहीं पाता है। वो गुलाम है तो सोचता है मैं नियंत्रक हूँ, यह क्यों है क्योंकि ज्ञान चक्षु नहीं है। पश्यन्ति ज्ञान चक्षु, अगर ज्ञान है तो देख सकता है, ज्ञान नहीं है तो समझ नहीं पाता है। और अर्जुन बोलते हैं कि अर्जुन हमें सब पूछते हैं अच्छा तो ऐसे फर्क क्यों होता है कुछ व्यक्तों में कि कोई व्यक्ति समझ पाते हैं कोई व्यक्ति समझ नहीं पाते, कुछ व्यक्ति को ज्ञान मिल जाता है कुछ व्यक्ति को ज्ञान नहीं मिलता है, ऐसा फर्क क्यों होता है? तो वो भगवान अभी इसको देते हैं। इसके बाद हम क्लास को विराम देंगे, इसका प्रचार करके यतन्तो योगिनश्चरणं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं यतन्तो लभ्यतात्मानो नैनं पश्यन्त्यचेतसः। वेदे यतन्तो, अगर कोई योगी है और वो यत्न करता है प्रयास करता है पश्यन्ति वो देख पाए रहे सब, कैसे मैं बहुत ही जगह में भोग नहीं कर रहा हूँ, मैं पीटा जा रहा हूँ, मैं वास्तव में आनंद नहीं सुखी दुखी हूँ, क्यों देख पाता है? पश्यन्ति आत्मन्य अवस्थितम, वह आत्मा के स्तर पर उपस्थित कर देता है। आत्मा के स्तर पर स्थित करना मतलब वो इंद्रिय बुद्धि को त्याग देता है। जब तक हम इंद्रिय में लगे रहते हैं तब तक क्या होता है, हम शरीर के स्तर से और आध्यात्मिक स्तर में क्या चल रहा है हम देख ही नहीं पाते। तो हमारी चेतना जो है वो केवल भोग को देख रही है, जो सत्य है वो दिखता है फिर भी दिखता नहीं। जैसे वो मुख्या उदाहरण है, एक बार शराब के विरोध जो प्रचार कर रहा था, ऐसा व्यक्ति एक शराबियों के संघ में गया और वहां पे वो अपना भाषण दे रहा था। वो बोला शराब कितनी खतरनाक है मैं भी आपको दिखाऊंगा, भाषण दिया शराब बड़ी खतरनाक, बाद में बोलेगा मैं आपको दर्शन देता हूँ। और क्या शराब के शराब का गिलास रखा और अपने पॉकेट में से बक्से में से उसमें मच्छर निकाला और एक मच्छर निकाल के उसको वो शराब में डाल दिया और शराब में डाल दिया तो क्या हो गया, तो मच्छर एक दो मिनट का जरूर घुमा नीचे गिर गया और मृत्यु हो गई और फिर वो सब की ओर देखने लग गया, सब की ओर देखने लग गया। इससे आप क्या सीखते हैं? और सब शराबी तो अपने से पीछे कर रहे हैं, समझ गया कि क्या सिखा रहे हो, सब से पीछे कर रहे हैं। तो एक शराबी का वो बड़ा पसंद था, ऐसे चेहरे पे स्मित था, क्या सीख रहे क्या आपको पता, क्या सीखते थे उससे कि शराब इतनी शक्तिशाली है कि अगर हम शराब पिएंगे तो हमारे पेट में जो भी यंत्र सब मर जाए। तो वो ये नहीं समझ में आया कि वो मर जाएगा, वो क्या समझ रहा है कि मेरे पेट में जो भी यंत्र है वो मर जाए। तो पश्यन अपनी में पश्यति, तो इच्छा क्या है भोग करनी है तो दिखता है तो भी नहीं दिखता है। तो ऐसा होता है कि हम देखते हैं कभी कभी हम इस भौतिक जगत की वासना के कारण
भौतिक दुख से आकर्ष नहीं होते, पर हम देखते कितने बार कि ऐसे बड़े बड़े अमीर लोग हैं जिनके पास सारे भोग हैं, वो फिर भी मंदिर में आ रहे हैं, भगवान के चरण में आ रहे हैं। तो अगर वो सब भोगों में आनंद होता तो भगवान के पास क्यों आते? तो उनके पास जो भोग है फिर भी वो भगवान के पास आ रहे हैं, इसके लिए सबूत है कि उन भोगों में सुंदर परिवार हो सकता है, बड़ा महल हो सकता है, बहुत धन संपत्ति, फिर भी वो मंदिर में आते हैं, भक्ति करते हैं, चिंतन करते हैं, प्रश्न सुनते हैं। क्यों? क्योंकि उन चीजों में आनंद नहीं है। तो हम हमारे आंखों में देख सकते हैं, तो फिर भी क्या होता है जब ऐसे लोग आते हैं तो शायद हमारा मन इतना मूर्ख होता है कि मैं ऐसे ऐसे जाऊँ जितना आनंद हो जाऊंगा। तो ये पश्चिम अपने पश्चिम तो अपकात्मा यथंतो अपि अपकात्मानो नैनम पश्यन् जीवता। अगर व्यक्ति आत्मा के दर्शन भी जीता है तो देखेगा फिर भी देख नहीं पाए, पर आत्मा से छह दीजिएगा तो सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। और फिर हम आसान समझ सकते हैं कि जो भगवान बताया है परम सत्य है, और ये सत्य हर जगह हम हमारे जीवन में कैसे उजागर होता है, जिससे हमारा हमारा साक्षात्कार से भर जाता है और हम बड़ी दृढ़ संकल्प से अपने प्रगति कर सकते हैं। तो भगवान बताते हैं कि जो भक्त है मन चित्ता मत्ता प्राण, क्या करना चाहिए? जो व्यक्ति होता है भौतिक जीवन में वो अपने शरीर के लिए बड़ा घर बना लेता है और घर में रहने का प्रयास करता है। वो भगवान होते हैं कि भक्त जो है उसको अपने मन के लिए घर बनना चाहिए, और मन का घर क्या है? वो मैं। हमेशा हमारे मन को भगवान में रखना चाहिए। घर मतलब क्या? कोई भी काम बाहर का खत्म हो जाए तो घर में आ जाते हैं हमें। तो वैसे भगवान को हमारा घर बनाना मतलब क्या? जो भी काम है वो कर लेना, वो काम हो गया तुरंत घर में आ जाना, मतलब तुरंत भगवान का, भगवान का नाम, भगवान के बारे में श्लोक, भगवान का कीर्तन, फिर भगवान की कथा उसे स्मरण में आ जाएगी, तो फिर क्या होगा? हम भी ज्ञान से खुश हो जाएंगे, हम भी ज्ञान से सब कुछ सत्य लेकर भगवान की ओर तेज से भगत करके भगवधाम लौट सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमद् भगवद गीता की सद्गुरुपाद की गौर भक्तवृंद की जय। गौर भगवान को हाँ 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 बहुत सुंदर सवाल है। चलो पूछ बताया गया है और इसी श्लोक में बताया इसी अध्याय में बताया गया है ततः पदम तत् परिमार्जित इसमें गतानंद समेव चार्य पुरुषों की प्रपत्ति। तो उस पुरुष के पास आप चले जाओ, भगवान बता रहे हैं। तो इसका स्पष्ट वर्णन जो विश्लेषण जो है 16वें 17वें 18वें 18वें श्लोक में आता है इसी अध्याय के, उनको बड़े महत्वपूर्ण श्लोक है। आप 16वें श्लोक में भगवान बताते हैं कि दो प्रकार के जीव है, एक बद्ध है एक मुक्त है। पर 17वें श्लोक बताते हैं कि जो पुरुषोत्तम है वो बद्ध और मुक्त दोनों से परे है, और 18वें श्लोक में स्पष्ट करते हैं जो पुरुषोत्तम कौन है? मैं ही हूँ। देखिए यहाँ पे कुछ भ्रम हो सकता है इस श्लोक में पढ़ के, पर अगर हम आगे देखते 16वां 17वां श्लोक वहां पर बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है जैसे कि वो जो है भगवान परम पुरुषोत्तम है और भगवान ऐसे पुरुष है जो मुक्त पुरुष के परे है। यस्मात् शरमती तो हम अक्षरादपिषोत्तम अतोस्मि लोके वेदेश प्रतिभ पुरुषोत्तम, क्योंकि मैं अक्षर जो बद्ध जीवात्मा उनके परे हूँ और जो मुक्त जीवात्मा उनके भी परे हूँ, इसीलिए मुझे पुरुषोत्तम बताया गया है। तो जो आगे श्लोक है वो बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है और उसके अगले श्लोक में और स्पष्ट हो जाता है। तो मैं इसी श्लोक में बोल जाता रहा ना कि जो चक्र की बात बताए 18वें श्लोक में संबंध ज्ञान आता है, 19वें श्लोक में अभिधेय ज्ञान आता है और 20वें श्लोक में अप्रयोजन बताया गया। 19वें श्लोक में भगवान स्पष्ट होते जो माम एव असमूढ़ो जानाति पुरुषोत्तम, तो जो मुझे का समझता है पुरुष नहीं पुरुषोत्तम, सर्वमि भजति माम सर्वभावेन भारत, जो ऐसे समझ जाएगा वो क्या होगा? सर्वमि हो जाएगा, सब कुछ ज्ञान हो जाएगा। तो अभी ये तुलना कीजिए, पहले श्लोक में भगवान ने वेदविद बताया था पर यहाँ पे सर्वविद बताया है, सर्वविद की व्यापकता वेदविद से और ज्यादा है। तो जो समझ जाएगा कि भौतिक जगह पृथ्वी में है उसको वेदों ज्ञान हो जाएगा, पर जो समझ जाएगा कि मैं परम पुरुषोत्तम हूँ वो सर्वविद हो जाएगा। और इस तरह से ज्ञान को जो क्या कार्य करेगा, इति गुह्यतम शास्त्र इदमुक्तम मया लगा, इति गुह्यतम शास्त्र, ये क्या है, सबसे शास्त्र में गुह्य है, और उसका क्या हुआ, कुतम उत्कृष्ट भारत, सारे कार्य में उसको यश मिल जाएगा। इस तरह से भगवान पहले 15-16-17 वर्षों को स्पष्ट करते हैं कि वे बद्ध मुक्त जीवात्मा से ऊपर है, और 18 श्लोक में और स्पष्ट करते हैं कि मैं पुरुषोत्तम, मैं केवल पुरुष हूँ, इस तरह से हम समझ सकते हैं। ओके, थैंक यू।